جاؤ میں قریب آ جاؤں. چلو دعا کر لیں. یہ بیچ کی جگہ کس کے لیے چھوڑی؟ کیا وجہ ہے؟ ناپاک ہے کیا؟ ارے آگے بڑھو اللہ کے بندے, دیکھو محتاج بن کر بڑھو آگے. جو محتاج بنتا ہے اللہ اسے دیتا ہے.
کل میسج آیا تو
قابل احترام بزرگوں, پیارے بھائیوں اور دوستوں, دنیا میں سب سے بڑا خوش نصیب آدمی وہ ہے جس کو اللہ ہی ایمان کی دولت دے. اس سے بڑا زمین کی پیٹھ پر کوئی دوسرا خوش نصیب ہے. اور ایمان ایک ایسی دولت ہے, اللہ جسے چاہتے ہیں اسے عطا کرتے ہیں. یہ عقل پر نہیں ملتا, یہ خاندانیت پر نہیں ملتا, یہ دنیاوی لائن کی بڑی بڑی ڈگریوں پر نہیں ملتا. اللہ ایک ہے, اللہ کے علاوہ کوئی دنیا میں کارساز نہیں ہے, کرنے والا نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ اللہ جس کو دیکھ اس کے اندر سے پوری دنیا کا تاثر نکل جاتا ہے. یہ بہت بڑا کلمہ ہے, زمین و آسمان پر بھاری. یہ ایمان کی دولت جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے, یہ اللہ کی بہت بڑی ہے. ایمان مل گیا, اب ایمان والے کا ہر عمل جو ہے اس ہر عمل پر بدلہ ملے گا. اصل بدلہ ملے گا اوپر آخرت میں, دنیا میں اس کی برکتیں ظاہر ہوگی. دنیا چھوٹی ہے, ایک مرتبہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا بدلہ یہ دنیا سوار برداشت نہیں کر سکتی. سب سے بڑی چیز میرے بھائیوں, سب سے بڑی چیز, مجھے بات لمبی نہیں کرنی, اور دعا کرنی ہے بس آخری, یہ سمجھو کہ وصیت میں کر رہا ہوں. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. ایمان ہے, ہر چیز کی قیمت ملے گی, ہر چیز کی قیمت. دنیا میں کسی سے محبت سے دو بول بولو گے اس کی قیمت ملے گی, ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو گے, ایک کھجور پوری کھجور بھی نہیں اس کا آدھا ٹکڑا اللہ کے لیے کسی کو صدقہ کرو گے, تو اس آدھے ٹکڑے میں اللہ نے ایسی طاقت رکھی ہے کہ جہنم کے عذاب سے بچا لے. شرط یہ ہے کہ ایمان. اس کے حدیث میں فرمایا اللہ کے لیے جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو بچاؤ, چاہے کھجور کا ٹکڑا ہی سکتا. ایمان والے پر اللہ کی رحمتیں اترتی, ایمان والا دعائیں مانگتا ہے, तो रहमान इनकी दुआओं को कबूल करता है। ईमान 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 से बड़ी कोई चीज नहीं। ये अल्लाह ने हमें इस ईमान की हिफाजत करें, इसलिए कि ईमान है, इस ईमान को बचाकर मौत तक ले जाना। ये कब होगी? जब ईमान वाला कदम कदम पर समझेगा कि मैं ईमान वाला हूं। ईमान बचाकर ले गया, बस काम हो गया। लेकिन रास्ते में बड़ी घाटियां है। ईमान के चोर है, नफ्स और शैतान हमारे पीछे लगे हुए हैं। दुनियावी चीजें आती हैं, इसके ईमान को बचाने के लिए माहौल में आदमी का होना जरूरी है। किसी चीज के माहौल में आदमी रहता है तो उस माहौल का असर होता है। सही माहौल में रहता है सही होता है, गलत माहौल में चला जाता है आदमी, अच्छे घर का लड़का है, इसके माँ बाप शरीफ है, इसका पूरा खानदान शरीफ है, हर एक उसके खानदान की तारीफ करता है, लेकिन उसमें एक लड़का ऐसा बन गया कि जो इंतहाई खराब हो गया। लोगों की बहू बेटियों की परवाह नहीं करता, जबान को संभालता नहीं है, छोटे बड़ों को गालियां देता है, कर्जे देता है, देता नहीं है, फजूल खर्च है, ऐसा तो लोग पूछते हैं कि यार ये कहाँ से आया, ये कहाँ है, इसका बेला तो अच्छा है, इसका बाप कैसा आदमी था, इसकी माँ कैसी अच्छी औरत है, इसके दादा कैसे आदमी थे। रात तो लोगों के पीछे पीछे फिरते थे, लोगों की जरूरतें पूरी करते थे, पूरा गांव इसके दादा का अदब करता था। क्या हुआ इसको, इसको क्या हुआ? पूरी गोपरा गांव ताजुब करता है। तो फौरन कोई समझदार जवाब देता है कि बीज तो अच्छा था, बेटा अच्छे खाने का है, लेकिन गलत माहौल में चला गया। अपने जुबान में शू के खोटी खोटी संगतें चली, गलत माहौल में ये बच्चा चला गया तो गलत हो गया। माहौल बनाना पड़ता है, दीन पर चलने के लिए माहौल है तो आदमी कल दीन पर चलना आसान हो गया। आपके घर में आपका बेटा, आपकी बीवी, आपकी बेटियां, आपके बच्चे, आपके पड़ोसी, आपके महीने वाले सब नमाज दिए, आपके घर कोई मेहमान आया वो अपने गांव में भी नमाज दिए, लेकिन आपके घर दो दिन मेहमान रहा तो नमाज के लिए बोलो बोलो आएगा क्यों? जिस घर में ये उतरा है, जिस घर का मेहमान बना है, उस घर में नमाज का माहौल है। आप पक्के नमाजी हैं, लेकिन आप किसी के मेहमान ऐसी जगह गए कि जहां कोई नमाज नहीं पढ़ता, तो आपको अपनी नमाज को पढ़ने के लिए अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा। जरा सी गफलत करोगे तो जमात भी जाएगी, और फिर और गफलत भी तो नमाज भी। क्यों? बेनमाजियों का माहौल, माहौल से कोई चीज बनती। अगर बस्ती में हया शर्म का माहौल, हया शर्म का माहौल, तो आपकी बस्ती में बहुत से हुकूमत के मुलाजिम आते हैं, जो रहने वाला बलसार का है, जो रहने वाला यूपी का है, जो रहने वाला बिहार का है, और वहां जा उसने अपनी बीवी बच्चों को ले आया, तो उसकी बीवी जो आई है ये तो गांव में किसी की बहू तो है नहीं, वहां जो होती है वो तो बेचारी घूंघट डाल के चलती है, यहाँ तो इसका कोई रिश्ता ही नहीं है। लेकिन ये औरत भी अपने सर पर चूके पूरे गांव में माहौल है तो दो पत्ता के बगैर चलेगी नहीं, घोर ना डालेगी। और मेरे आपके बच्चे हैं, उनकी बीवियां ऐसी बस्ती में चली गई जिस बस्ती में फैशन ही फैशन है, यहां उनको किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा, लेकिन उस माहौल में गई तो कुछ दिनों के बाद में इसके भी सर से दो पट्टा उतर जाए, माहौल का असर पड़ा। और माहौल आदमी चाहे या ना चाहे असर डालता ही है। सर्दी का माहौल आया, माहौल की मिसाल मौसम की है, सर्दी आई लगेगी सबको, है भाई, सबको, मालदार को भी, गरीब को भी, मौली साहब को भी, कारी साहब को भी, पीर साहब को भी, मिनिस्टर साहब को भी। जैसे मौसम असर करता है हर आदमी ऊपर, ऐसे माहौल हर एक पर असर करता है। गर्मी आएगी, ये वो ईमानदारी का माहौल, अच्छा माहौल गांव में होगा तो पूरे गांव में अच्छा माहौल बनेगा। सबके लिए दीन पर चलना, अखलाक पर चलना, अच्छे बच्चे बनना, अच्छे आदमी बनना, हुकूमत के अच्छे शहरी बनना, इसके लिए अल्लाह के नबी वाली मेहनत है, माहौल बनाना पड़ता है। बनाने के लिए भी मौलवी साहब ने तो कुछ आमाल बताए, अपनी बस्ती में इसका माहौल बनाओ, हर आदमी नमाजी बने, हर आदमी मस्जिद में आने वाला बने, हर बहन में हया आए, शर्म आए, हर घर में तालीम का माहौल बने। इसलिए कि बच्चा वो बनेगा जो घर में होगा। बच्चा शुरू में पैदा होता है बोलता है, बोलो, नहीं बोले, लेकिन दो साल के बाद जो बोलेगा वो कौन सी लैंग्वेज बोलेगा? मेरे तुम्हारे घर का बच्चा जो है वो बाप को बाप कहेगा कि फादर कहेगा? बोलो ना यार, तुम लोग तो ऐसे हो गए जैसे आसमान से अभी उतरे हो। वो गुजराती में बाबा ही कहेगा, बाप ही कहेगा, माँ ही कहेगा, इसको सिखाया किसी ने। लेकिन ये जो दो साल में बंद जबान थी, आंखें खुली थी, कान उसका खुला था, इस घर में जो बोलते रहे, जो कहते रहे, जो होता रहा, वो बच्चे को जिस दिन जबान मिलेगी वो वही बोलेगा जो उसने दो साल में सुना है। घर का माहौल फिर उस बच्चे पर असर करेगी कौन? मैं और आप में इसकी माँ का असर आएगा। मैं चाहे कितनी, मैं और आप चाहे कितनी भी बातें करें, लेकिन माँ की जबान बोलेगा बच्चा। इसलिए दुनिया में कहा जाता है मदर लैंग्वेज, मादरी जबान, माँ की जबान वो बोले, माँ में जो होगा वो बच्चे में मुंतकिल होगा, वो बच्चे में आएगा। माँ क्या है? बहुत समझदार लोग, मैं बस आखिरी आखिरी बातें कर रहा हूं। माँ की मिसाल जानते हो? आपने एक खिलौना देखा, बहुत अच्छा खिलौना, दुकानदार से पूछा ये कितने का? उसके 150 रुपये। ले आया घर, दो दोस्त बैठे, यार इसकी फैक्ट्री डाल दी क्या करें? मुझे समझदार से पूछा कि इसकी डाई बनानी पड़े, इसकी डाई समझ दो, डाई इसके परमो बीबो। अब वो लेकर गए वहां, जो लोग डाई बनाते हैं, बीवा बनाते हैं, उनके पास आज वो खिलौनों से हमारा यानी फैक्ट्री बढ़ा भी है, यानी डाई यानी बीबू हमारे बना हुआ है। जो ही होता कैसा था से प्राण के सारा प्राण लाख रुपया था, बोला 150 रुपये में से ये से डाई से। अरे वो संभाली ने बड़ा ऊपर से, कोई जरा से डाई में एक मामूली आम लकीर रही कि ना, तो तबे 5 लाख खिलौना बड़ा हो तो बद्दा मुझे लकीर आओ, ये खोर बद्दा माओ से। वो साबती नहीं थी बड़ा ऊपर, ये डाई माँ से बद्दा खिलौना माओ से। बच्चों का पढ़े हमारे तैसुद है, हमारा क्या तो माना पेट में बड़ा तमाम क्या मामा जैसे बोलो बच्चा मामो माँ दीनदार बच्चों दीनदार मामो हया बच्चा मोह जो चीज माँ में होगी वो बच्चे में होगी। अब इस माँ को घर में जो बनेगा वो घर की औरत बनेगी। आप 500 रुपए किलो के चावल लाओ आप कहाँ तक लाओगे बोलो? घर ना दरवाजा से किचन ना दरवाजा से आगे पची यानी बिरयानी बनावी कि खिचड़ी बनावी ये तो एक बना यानी जे गत बनावानी से तो एक बना माँ में। अब ये माँ ये बीवी जो बनकर मेरे और आपके घर में आई है ये कौन है? ये अपने घर में थी अपने माँ बाप के बहुत लाड से पड़ी थी सारे भाइयों की प्यारी थी माँ और बाप की आंखें का ठंडक थी एक शरीयत के एक दो बोन की जगह पर ये औरत वहां से हमारे घर मुंतकिल हुई इसने अपने आप को अपने शौहर का बना दिया। कितना बना दिया पहले दिन से कितनी उस शौहर की हो गई जिंदगी भर जिस घर में पली है जिस घर में बड़ी हुई है लेकिन शादी से पहले उसको कोई पूछे कि कहां जाते थे मेरे घर लेकिन शादी हो गई जा रही थी आप रास्ते में खड़े थे आपकी बच्ची है आपकी भतीजी है आपकी बहन जी है रिश्तेदार आप लोग तो बेटा कहीं जाए इसका बोल समझो क्या कहेगी अब्बा के घर जा रहे और कभी वापस हुआ और पूछा बेटी कहाँ जा रही तुम्हारा घर लो। शादी हुए एक महीना हुआ उसने अपने बाप के घर को बाप का घर कह दिया ये पराया घर था आज निकाह से आपके हवाले हुई उसने आपके घर आपका झोपड़ा है इसको ये अपना घर कह दिया। अपने नाम के साथ आज तक उसके बाप का नाम रखता था जब निकाह हुआ निकाह के बाद म्युनिसिपैलिटी या पंचायत का कोई आदमी लिखकर नाम लिखने के लिए आया अपने नाम के साथ किसका नाम लिखाएगी कितना अपने आप को हवाले कर हमने उस औरत को क्या दिया जिसने अपने आप को इतना हवाले कर दिया दो चार जोड़ी कपड़े चीजड़े सुबह शाम की दो रोटियां दो चार जेवरात जबकि इस घर में रात को हम सोते हैं तो इस हाल में सोते हैं कि वो जागती होती सुबह हम उठते हैं तो इस हाल में उठते हैं कि वो बोलो जागती रात को उससे बच्चों ने उसकी क्या गत बनाई मैंने और आप तो घसघसाहट सो रहे थे इस औरत को हमने क्या दिया कभी बैठ के उसका कलमा सुना ये मेरे साथ जन्नत में जाए कभी बैठ कर उसकी अलहमद शरीफ सुनी दुनिया भर के खुराफात की बातें की कभी बैठ करके उस औरत के पास बैठ कर अल्लाह रसूल की बात कभी बैठ करके किताब पढ़ी उसके सामने ये तो तेरे शौहर की इताअत करे तुझे खुदा क्या देगा वो तो शरीफ है शरीफ थी तो मेरी आपकी खिदमत कर रही सोचो 15 साल
साल 20 साल 25 साल 30 साल हमारे बच्चों की दादी बन गई, हमारे बच्चों की नानी बन गई, हमारे बच्चों की माँ बन गई, हमारे और हमारे बच्चों के खिदमत करते करते उसके हाथ और पाँव में झुर्रियां पड़ गई। इसी दिन उसे लेकर बैठे, इसकी आखिरत का क्या होगा, इसकी नमाज का क्या होगा, हमसे ज्यादा सख्त दिल कौन हो सकता है, हमसे ज्यादा जालिम कौन हो सकता है, जिसने अपना सब कुछ हमारे हवाले कर दिया, अपने नाम तक को आपके नाम पर, मेरे और आपके नाम के साथ जोड़ दिया। सोचो तो सही, हमने अपने घर में दीन लाते वो खुश रहती, उसकी आकर्षण बनती, उसकी गोद में पलने वाले बच्चे दीनदार बनते, ईमान महफूज हो जाए। हमने ये नहीं किया, हमने कोई दीन की बात नहीं की, दुनियादार दुनिया में तो ईमान के डाकू बहुत फिर रहे हैं। फिर घर में पता नहीं कौन सी अला भला टीवी वीवी ला करके पूरी दुनिया की बातिल चीजें वो देख रही है। अब तो हम दिखा रहे हैं, छोटे छोटे मेरे भाइयों, अगर अपने ईमान का शुक्र न किया, अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए, कल वो दिन ना आए कि हम जिंदगी भर ईमान वालों का नाम हो और कल कयामत के इन काफिरों की फहरिस्त में खड़े हो। तो मेरे भाइयों संभलो, इसके लिए एक मेहनत है, ये लाओ इस मेहनत को अपनी जिंदगी में डाल दे, मस्जिद में नमाज पढ़ो, पाबंदी के साथ तय कर दो कि 5 वक्त की नमाज पढ़ो,
इंशाल्लाह
नमाज पढ़ोगे घरों में बरकत आएगी। दिन रात मेहनत करके थक जाते हो, खेतों में मेहनत करके, रक्षाओं पर मेहनत करके, ठेले उठा उठा करके थक जाते हो, बदन की हड्डियां हड्डियां बोलती है कि क्या करें, हाय अफसोस। तो बरकत का जहां से रोजी की बरकत आती है उस पर सारा तो लोग करके जाते हैं, नमाज से रोजी में बरकत आती है, नमाज के जरिए से पूरी दुनिया के औलिया अल्लाह की दुआओं में हमारी शिरकत होती है, नमाज के जरिए से आदमी अल्लाह की जमानत में आ जाता है, अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है। मसल्ला सुबह हो अभी जिम्मत इल्ला, फजर की नमाज पढ़ी तो आपको पूरे दिन मेरे दिल में आ गया, मेरे पना में आ गया, नमाज को छोड़ दिया, क्या बाकी रहा मेरे पास, मेरे आपके पास। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये होगा, जब आदमी को अपने रास्ते का पता नहीं होगा तो उसकी बहुत बड़ी छीन ली जाएगी उससे मालूम। आपके घर में आप सोए हुए, कहीं से कोई चेक आकर के बाहर दरवाजे पर आप पर कोई नौकर आकर के साथ ये चेक, आपने चेक देख लिया, जिसने भेजा था उसके बराबर दस्तखत सारा कंप्लीट करके भेजा, आपकी आंख लग गई, छोटा बच्चा आपका वो चेक लेकर के बाहर निकला, 10 लाख का चेक था, रास्ते में कोई बदमाश आदमी मिला, जाए बेटा उसे देना ही चेक, जाए बेटा तेरे हाथ में खड़ा ना, मैं आता वो गया 5 रुपये की चॉकलेट वॉकलेट लेकर के आया, बेटा चॉकलेट से जेब भर दिया, घर गया बच्चा खुश एकदम से, अम्मी क्या है अम्मी क्या, अम्मी वो हुआ अब्बा के तकिए के पास में कागज पड़ा हुआ था वो मैंने चाचा को दिया और चाचा ने मेरे को इतनी चॉकलेट दी, बच्चा खुश आ रहा है, मैं खुश तो बाप की आंख खुली और बाप की आंख खुल करके देखा तो सर पीट करके रह गया मोटे। क्योंकि बच्चा जानता नहीं है चेक की कीमत क्या है। चेक में 10 लाख के चेक में पता नहीं कितनी कितने चॉकलेट और क्या क्या अंदर छुपा हुआ था। ईमान वाला ईमान की कीमत को नहीं जानता, इतनी बड़ी चीज है। अगर ये इसकी कीमत को नहीं जानता तो बच्चे से ज्यादा नादान है। पता नहीं रास्ते में कौन क्या दिखा करके इसके हाथ से ईमान छीन ले। ये सहूलतें कर देंगे, ये सहूलतें कर दे, आ जाओ। कीमत को जो नहीं जानता, कितनी बड़ी चीज इसने दे दी है। ये तो मौत के बॉर्डर पर इससे पता चलेगा कि ये कुछ मुझे फ्लैट और कुछ चीजों की सहूलतों की बातें की थी, ये तो सारा दुनिया में रह गया और यहां मैं बर्बाद हूं। इसके मेरे भाई, ईमानी माहौल में बैठो, ईमानी मजलिस में बैठो, घरों में फजाइल की तालीम शुरू करो, नमाजों का अहतमाम करो, अपनी बस्ती के एक एक ईमान वाले के पास जाओ, उससे मिलो, एक एक ईमान वाले की खैरियत पूछो, उससे मिलो, उसको दीन समझाओ। दीन बस्ती में आएगा, बाहर आएगी। और अगर दीन बस्ती में नहीं होगा, माफ करिए, माफ करिएगा, माफ करिएगा, फिर कहता हूं माफ करिएगा, बाप दादा की जमीनें बेच करके भिखारी बन जाओ। दुनिया में बहुत सारा हुआ। ये मुगल बादशाह जिन्होंने जुमा मस्जिद बनाई थी, और ये मुगल बादशाह जिन्होंने लाल किला बनाया है, ये मुगल बादशाह जिन्होंने बड़ी बड़ी इमारतें पूरे हिंदुस्तान और पुराने हिंदुस्तान में बनाई है, उन घरों की औरतों को लोगों ने जामे मस्जिद की सीढ़ियों पर भीख मांगते हुए देखा। समझ लो मेरी बात, समझदार लोग, बड़े खतरनाक दौर से गुजर रहे हो, और हमारी हिफाजत सिवाय अल्लाह के दीन के कहीं नहीं है, कहीं नहीं। और अल्लाह का दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका आएगा तो पूरी पूरे मुल्क के सारे लोगों की आंख का हम तारा होंगे। और अगर दीन हमारी जिंदगी में नहीं है तो हम कांटे के तरीके से लोगों की आंखों में खड़ गए और जिंदगी बर्बाद। बहुत जरूरत, बहुत जरूरत इस दुनिया में इबादत के लिए और आखिर के बनने के लिए दीनी माहौल। हर बस्ती में गांव के बड़े बड़े लोग जो अपने आप को मत दीन से दूर मत रखो, बस्ती में मेहनत करो, कोई बेनमाजी नहीं रखो, खुशामत करो, डांट कर नहीं, तेरा हुक्का पानी बंद करके यो नहीं, एक एक खुशामत करो, पूरे गांव के हर घर में नमाज को दाखिल करो, हर घर में फजाइल की तालीम को दाखिल करो, हर ईमान वाले के हालात पूछो, बहुत बड़ी ताकत बन जाओ, वरना मेरे दोस्त ये दुनिया में बात करो। इसलिए आज तो ये पूरा मजमा तय करो और सोच कर तय करो, खाली मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं, आज इस मजलिस में तय करो कि मौलवी साहब जो हो गया अल्लाह माफ कर दे, आज से लेकर मौत तक एक नमाज हमारी नहीं जाएगी, पक्का हद अल्लाह से करो, अल्लाह जो हो गया माफ कर दे, आइंदा एक नमाज मेरी कजा नहीं होगी। कौन तय कर सकता, अल्लाह से वादा कर, अल्लाह से मांगो ऐसा तौफीक दे, मैं इतना क्या गया गुजरा हूं कि तेरे दरबार में तू मुझे दाखिल नहीं होने देते। मस्जिद तो अल्लाह का दरबार है, मैं इतना क्या कमीना बन गया हूं कि तेरे दरबार में मुझे तू दाखिल नहीं होने देता। माफी मांग, अपने घर में नमाज और दीन के लाने के लिए कोई कोयड़ा नहीं, कोई डांट नहीं, कोई गाली नहीं। आसानी से आप चाहते हैं कि आपका हर बच्चा और आपके घर में रहने वाली हर मस्तूरात नमाज की पाबंद हो जाए, चाहते हो? कौन जाता है? किसी को मत जाता, इनको बेचारों को पता नहीं इसके भाव का। रोज आना, अपने भी बच्चों को लेकर बैठो और बैठ करके ये फजाइल आमाल की किताब है ये पढ़ो, खुद पढ़ो बच्चे से पढ़ो। उर्दू नहीं पढ़ सकते गुजराती में मिलेगी, जहां इसको पढ़ना शुरू करोगे तो जाहिर में तो ये होगा कि एक किताब एक पढ़ रहा है सब सुन रहे हैं, नहीं, उस घर में अंधेरा जो है वो निकल करके अल्लाह के नबी की हदीस की रोशनी दाखिल होनी शुरू होगी। पाबंदी से करोगे तो कुछ महीने के बाद देखोगे आपके छोटे छोटे बच्चों की जबान पर सुभान अल्लाह आपके घर की औरतों आपके घरों में बरकत दाखिल करो, और इसके लिए अल्लाह के रास्ते की टालो मत, बहुत ज्यादा अपने आप को समझदार मत समझो, अपनी तस्वीर बनाओ। 4 महीने गुजर जाएगी लेकिन चाल लेकर आओगे, अपने घर के बच्चों को अपनी साल से अल्लाह के रास्ते में निकलने के महीने में 3 दिन है, साल में 15 है, 4 महीने है, लगाओ। वो बड़े ही समझदार है और अल्लाह से मांगो। करोगे भाई? करोगे? अच्छा एक बात करो, जमात में जाने वाले चाहे अभी जाने वाले हो, कल जाने वाले हो, हफ्ते के बाद जाने वाले हो, जिन्होंने अपने नाम दिए हैं वो जहाँ जहाँ हो बैठे हो जरा खड़े हो जाए, जहाँ बैठे हो खड़े हो जाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़े मुबारक लोग हो, बड़े मुबारक लोग हो, आप कामयाब हो गए, हम लोग यहाँ से खुश हैं। जिसका जमात में यहाँ से निकलने की तकलीफ है भाई आप लोग यहाँ आगे आ जाओ, भाई आप भी आ जाओ यहाँ जमात में जाने वाले आगे आ जाओ, आप लोग आप लोग बैठे आगे वाले आ जाओ सामने आ जाओ।
आजा आजा जल्दी करो,
देखो ऐसे भी चिकनी आ गई।